पंचाध्यायी लेक्चर नंबर 7 ओम नमः सिद्धेश ओम नमः सिद्धेश ओम नमः सिद्धेश ओम शुद्धात्मने नमः नमो हरिहंतानम् नमो सीतानम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूनम् तत्त्वं सल्लक्षणिकम् सन्मात्रं मायतः स्वतः सेदम् तस्मादनादिगिदनम् स्वसहायं निर्विकल्पं च। यह ग्रंथ राष्ट्रीय पंचाध्यायी है और उसके पृष्ठ संख्या 12 पर हम आ गए हैं। देखो, कल शंकाकार ने एक शंका पूछी थी कि जब आप निरंश अंशों की कल्पना करते हो तो करो, परंतु हर एक जो अंश है उसको एक द्रव्य समझो। इस शंका का निराकरण करने के लिए, समाधान करने के लिए उन्होंने 32, 33 और 34 तीन बताए थे समाधान के लिए कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि खंड स्वरूप एक देश को वस्तु अगर मानेंगे, द्रव्य मानेंगे, तो जो गुणों का परिणमन पूरे देश में होता है तो उसमें बाधा आ जाती है। इन पूरे देश में तो पूरे देश में गुणों का परिणमन हो रहा है और आप उसके एक देश को यानी एक प्रदेश को आप एक एक द्रव्य समझ रहे हैं, तो इसमें तो कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती, बाधा आ जाती। फिर उन्होंने बताया कि खंड रूप एक प्रदेशी द्रव्य मानने से वो गुणों का परिणमन पूरे में नहीं होकर एक देश में होगा, ऐसा मानना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्य उतना ही है मानेंगे आप तो। परंतु ऐसा भी कहने में या देखने में नहीं आता, क्योंकि वो प्रत्यक्ष बाधित होती है, इसलिए ये बात सिद्ध हो जाता है। ये सिद्ध हो जाती है कि द्रव्य के जो अंश है, प्रदेश है, उसको एक एक द्रव्य नहीं मान सकते। इसके बाद अभी जो आचार्य ने बताया था वही बात सही है, जिसको कहेंगे पहला पक्ष ही सही है, ये बात यहाँ बताएंगे 35 नंबर में। प्रथमे तरपक्षे खलु यह परिणाम स सर्वदेशेषु एको हि सर्वपर्वसु प्रकम्पते ताडितो वेणु। दूसरा पक्ष स्वीकार करने पर, अर्थात अनेक प्रदेशी अखंड रूप द्रव्य मानने पर जो गुणात्मक परिणमन होगा वो सर्व देश में ने संपूर्ण वस्तु में होगा, यह ठीक है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष देखते हैं एक बेत को एक तरफ से हिलाने से सारा बेत हिल जाता है। बेत यानी हमने देखा था केन, जिसको कहेंगे आप अंग्रेजी में भावार्थ। बेत का दृष्टांत मोटा है, इसलिए ग्राह्य अंश लेना चाहिए, यानी दृष्टांत हमेशा पूरे में लागू नहीं होता, जितने पार्शली लागू होता है उतना ही समझना चाहिए। वेद यद्यपि बहुत से परमाणुओं का समूह है, तथापि स्थूल दृष्टि से वह एक ही द्रव्य समझा जाता है। यहाँ दृष्टांत के लिए उसको द्रव्य मानकर दृष्टांत दे रहे हैं, वो एक द्रव्य नहीं है, अनंत परमाणुओं का समूह है। 13 नंबर पृष्ठ। वेद अखंड रूप वस्तु है, इसलिए एक प्रदेश को हिलाने से उसके संपूर्ण प्रदेश हिल जाते हैं। यदि अखंड स्वरूप अनेक प्रदेशी उसे न मानकर उसके एक एक प्रदेश को जुदा जुदा द्रव्य समझा जाए, तो जिस देश में बेंग को हिलाया जावे उसी देश में उसको हिलना चाहिए, यानी एक देश हिलाने पर अन्य नहीं हिलने चाहिए थे, सब देश में नहीं, परंतु यह प्रत्यक्ष बाधित है, यानी प्रत्यक्ष में ऐसा देखने में नहीं आता, इसलिए वस्तु अनेक देशांशों का अखंड पिंड है। अब 36 नंबर पढ़ेंगे। एक प्रदेशवदपि द्रव्यं स्याखण्डवर्जितः स यथा परमाणुरेव शुद्धः कालाणुर्वा यथा स्वतः सिद्धः। इस प्रकार यद्यपि अखंडित अनेक देश वस्तु का समर्थन हो जाता है, तो भी सब वस्तुएं ऐसी नहीं है, किंतु यहाँ वो ब्रैकेट पूरा करना है, कोई कोई द्रव्य एक प्रदेश वाला भी है, यानी अखंड होने पर वो एक प्रदेशी भी द्रव्य है और वह खंड रहित है, अर्थात अखंड एक प्रदेशी भी कोई द्रव्य है, जैसे उद्गल का शुद्ध परमाणु और कालाणु। ये स्वतः सिद्ध ही एक एक प्रदेश वाले द्रव्य है, खंड होकर एक प्रदेशी नहीं हुए, यानी उसके भिन्न भिन्न प्रदेश, यानी बहुप्रदेशी था और उसका एक एक प्रदेश होकर एक द्रव्य नहीं हुआ है। 37 नंबर। न स्याद्रव्यं क्वचिदपि बहुप्रदेशेषु खण्डितो देशः तदपि द्रव्यमिति स्यात् अखंडितानेक देशमदः। इससे ज्ञात होता है कि कहीं भी बहुत प्रदेशों को खंडित करके एक अंश रूप द्रव्य नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वत्र यह भी वही द्रव्य है। इस प्रकार का प्रत्यय होने से द्रव्य अखंडित अनेक प्रदेश वाला सिद्ध होता है। यह भी वही द्रव्य ने किसी भी प्रदेश को अपर देखेंगे तो उसी द्रव्य की वो बात है। जैसे खंभा है, हमने ऊपर टच किया और बताया ये खंभा है और नीचे बताया ये खंभा है, तो वही है ना। यहाँ तो एक अखंड वस्तु मानकर हम बता रहे हैं। प्रत्यय, हाँ, इस प्रकार का प्रत्यय होने से, यानी इस प्रत्यय का अर्थ एक कारण भी होता है, और यहाँ सर्वत्र यह भी वही द्रव्य इस प्रकार का प्रत्यय होने से, यानी इस प्रकार ख्याल में आने से। नोट, द्रव्य के अखंडित शरीर को देश कहते हैं, यानी पूरे द्रव्य का जो विस्तार है उसको देश कहेंगे, और उसकी काल्पनिक देशांश कल्पना को प्रदेश कहते हैं, यानी उसके हमने जिसका दूसरा विभाग नहीं होगा ऐसा उसका एक यूनिट बनाया तो उसको प्रदेश कहेंगे। यह तो वास्तविक अर्थ है, पर संस्कृत भाषा में कहीं कहीं पर देश के लिए प्रदेश भी प्रयोग कर देते हैं, और प्रदेशों के लिए देश तो बहुत प्रयोग कर लेते हैं, सो अर्थ समझते समय यह ध्यान रखने की आवश्यकता है, भूल न हो जाए, यानी जहां जिस अपेक्षा से बात की है उसको वहां ले लेना चाहिए। अब ये जो हमने 23 से लेकर 37 तक के जो श्लोक पढ़े हैं उसका सार यहाँ दे रहे हैं। उक्त विवेचन से दो बातें निष्पन्न होती हैं। देखो यहाँ जो अंक डाले ना क्रमांक, एक दो एक दो एक दो, तो पहले एक दो को हम ए नंबर डालें, ए संख्या, दूसरे एक दो को बी लिखेंगे, तीसरे एक दो को सी लिखेंगे। यानी ए नंबर में क्या लिखा है, एक नंबर के पॉइंट पर, या तो द्रव्य अखंडित अनेक प्रदेश वाले, और दूसरे में या अखंडित एक देश वाले है। हमें मालूम है कौन से अनेक देश वाले है, कौन से है, आकाश, बस बस, जीव धर्म अधर्म और आकाश, क्योंकि यहाँ परमाणु से शुद्ध परमाणु को लेना है उद्गल, और अखंडित होने पर भी एक एक ही प्रदेश वाला, एक ही देश वाला, उसका देश ही कितना है तो एक प्रदेश ही है, परमाणु और कालाणु। बी नंबर में एक नंबर का पॉइंट, अखंडित अनेक देश वाला द्रव्य तो इसलिए है कि द्रव्य के किसी एक भाग में गुण परिणमन होने पर उसका परिणमन समस्त द्रव्य में देखा जाता है, इसलिए वो पूरा ही अखंड ही द्रव्य है। और दो नंबर का, तथा अखंडित एक देश वाला यानी एक प्रदेश वाला द्रव्य इसलिए है, जैसे द्विअणुक यानी दो अणुओं से बना हुआ आदि, आदि में द्विअणुक त्रिअणुक असंख्यात अणुक अनंत अणु का बना हुआ स्कंदों का विभाग किया जा सकता है, वैसे अणु का विभाग करना संभव है, क्योंकि वो सबसे छोटे में छोटा जो एक प्रदेशी द्रव्य है उसका दूसरा विभाग नहीं होता, परंतु ये स्कंद होने से उसका विभाग हो सकता है। अब सी नंबर, सी में एक नंबर, अखंडित अनेक देश वाले द्रव्य चार है, हमने देख ही लिए है, जीव धर्म अधर्म और आकाश, और सी में दूसरा पॉइंट है अखंडित एक देश वाले द्रव्य दो है उद्गलानु और काला। नोट, स्कंद को जो अनेक प्रदेशी कहा जाता है वह औपचारिक कथन है, यानी स्कंद को कभी पुद्गल द्रव्य भी कह देंगे, पंचास्तिकाय भी में उसको भी पुद्गलास्तिकाय कहेंगे, परंतु वह उपचार से कहेंगे। शुद्ध आदेश में, आदेश का अर्थ होता है कथन, शुद्ध कथन में उपचार कथन का ग्रहण नहीं होता, इसलिए ऊपर जो बताया वो शुद्ध कथन है। श्लोक 23 से यहां तक देशांश का, देशांश यानी विस्तार, जो चौड़ाई है द्रव्य की कितना फैला हुआ है, विस्तार क्रम का अर्थात द्रव्य की चौड़ाई का निरूपण हुआ, यानी यहां तक वो द्रव्य कितना बड़ा है वो बात बताए, और उसको नापने का जो माप है, यूनिट है, वो है प्रदेश। अब लंबाई का वर्णन करते हैं, तो कौन सा द्रव्य ज्यादा लंबा है, सब समान, क्यों लंबा किसको कहेंगे, अनादि अनंत, यानी उसको काल की अपेक्षा कब से कब कहां तक फैला है, कहते अनादि से अनंत काल, तो उसको उसकी लंबाई कहेंगे, जिसको ऊर्ध्व प्रचय भी कहते हैं, चौड़ाई को तिर्यक प्रचय कहेंगे, कितना फैला हुआ, और ऊर्ध्व प्रचय यानी काल की अपेक्षा, यानी उसके एक एक समय में एक एक अलग अलग अवस्था होती है, परंतु द्रव्य तो कायम टिका है, तो द्रव्य तो अनादि से अनंत काल, तो क्योंकि उसका तो है अस्तित्व तो बना है, सत उसका लक्षण है, तो उसकी लंबाई कितनी है, तो कहते हैं अनादि अनंत। इसके लिए 38 नंबर पढ़ेंगे, अथ चैवते प्रदेशा सविशेषा द्रव्य संज्ञया वणिता अपि च विशेषा सर्वे गुण संज्ञास्ते भवन्ति आवन्त। ऊपर जिन देशांशों ने प्रदेशों का वर्णन किया है वे देशांश गुण सहित है। यहाँ ये कथन पद्धति कुछ अलग से, पहले में उन्होंने द्रव्य की चौड़ाई सिद्ध की, यानी द्रव्य के उसके प्रदेश सिद्ध किए। अब जितने भी प्रदेश है, एक प्रदेश या कोई अनेक प्रदेश ही हो द्रव्य, तो ये जो देशांश है उसके जो प्रदेश है वे गुण सहित है, यानी द्रव्य अनेक प्रदेशों वाला है या एक प्रदेश वाला, यानी उसका वो देश है, और वो कैसे, तो गुण सहित है, गुण सहित उन्हीं देशांशों की द्रव्य संज्ञा है। उन देशांशों में रहने वाले जितने विशेष है उन सबकी गुण संज्ञा, गुणों को ही उसके विशेष कह दिए। भावार्थ, द्रव्य अनंत गुणों का समूह है, इसलिए जितने भी द्रव्य के प्रदेश है सब में अनंत गुणों का अंश है। देखो अंश यानी कैसा अंश है, क्योंकि प्रत्येक प्रदेश में गुण है, क्योंकि गुण कहाँ तक है, तो पूरे द्रव्य के संपूर्ण भागों में, जो संपूर्ण भागों में है तो प्रत्येक प्रदेश में भी है ना, ये तो सिद्ध हो जाता है। जीव के असंख्यात प्रदेश है, तो ज्ञान गुण असंख्यात प्रदेशों में फैला हुआ है, तो उसके प्रत्येक प्रदेश में है ही, पर वो पूरा उसके अंदर नहीं आया है, वो पूरे में है, पूरे में मिलकर ज्ञान गुण है, इसलिए उसका अंश बताएंगे। नहीं, स्प्लिट हुआ, वो अखंड है। स्प्लिट नहीं, क्योंकि वो पूरा द्रव्य के संपूर्ण भागों में है, कहने से जितना बड़ा द्रव्य उतना बड़ा गुण, ये तो देशांशों की तो कल्पना की है, तो उन्हीं प्रत्येक देशांशों में तो विशेष है ही है। उन गुणों सहित जो प्रदेश है उन्हीं की मिलकर द्रव्य संज्ञा है। देखो ये कुछ विशेषता लिए है, हमेशा हम गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं या गुण पर्याय को मिलकर द्रव्य कहते हैं, यानी वहाँ गुणों को लिया और काल को लिया, यानी पर्याय को लिया, काल को लिया, यहाँ क्षेत्र से शुरू कर दिया, पहले द्रव्य की बात की, फिर उसके क्षेत्र होता है, और फिर वो गुणों सहित यानी विशेषों सहित है, और वो कब से कब तक वो तो बताएंगे अभी, अनादि अनंत है, वो लंबाई में बताएंगे। 36 का 39 कर। तेषामात्मा देशो नहि ते देशात् पृथक्त्व सत्ता का नहि देशे हि विशेषा किन्तु विशेषश्च तादृशो देश। उन गुणों का आत्मा ही देश है, गुणात्मक कहेंगे ना, यानी गुण में गुण, आत्मा यानी वो जीव वाला आत्मा, वो नहीं लेना, हाँ उसका समूह, यह ब्रैकेट में लिखा ना, उन गुणों का आत्मा यानी गुणों का समूह ही देश है यानी अखंड द्रव्य है, क्योंकि अखंड द्रव्य को हमने देश कहा था, उसकी चौड़ाई उसको देश कहा था। वे गुण देश से भिन्न अपनी सत्ता नहीं रखते, यानी द्रव्य का जो विस्तार है वही गुण की भी सत्ता वहीं पर है, यानी गुण की सत्ता कहीं अन्यत्र हो और द्रव्य की सत्ता कहीं या देशों की उसके क्षेत्र की सत्ता अन्य हो ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि देश में गुण रहते हैं किंतु उन विशेषों के मेल से ही वह देश कहलाता है, यानी ऐसे भी नहीं कह सकते कि अगर देश में गुण रहते हैं तो कैसे कह सकेंगे, तो गुणों के मेल से ही वह देश कहलाता है। भावार्थ बता रहे, नैयायिक दर्शन वाले गुणों की सत्ता भिन्न मानते, उसके प्रदेश भिन्न मानते, वो अलग है गुण और द्रव्य अलग है मानते, और द्रव्य की सत्ता भिन्न मानते, यानी दोनों का क्षेत्र जुदा जुदा है मानते, द्रव्य को गुणों का आधार बतलाते हैं, परंतु जैन सिद्धांत ऐसा नहीं मानता, यानी ऑलरेडी द्रव्य है वहां पर और वो गुण उसके आधार से रहते हैं। तो जैन सिद्धांत क्या है, तो गुणों के समूह को ही देश मानता है और उन गुणों की द्रव्य से भिन्न सत्ता भी नहीं स्वीकार करता। ऐसा भी नहीं है कि द्रव्य आधार है और गुण आधेय रूप से द्रव्य में रहते हैं, क्योंकि द्रव्य में रहते तो द्रव्य क्या चीज है कि जिसमें गुण रहते हैं, ये गुणों के समूह, तो फिर द्रव्य में गुण रहते, द्रव्य ऑलरेडी है तो उसमें कैसे गुण रहेंगे, ख्याल में ये कहने की। किंतु उन गुणों के समुदाय से ही यह पिंड द्रव्य संज्ञा पाता है। 40 नंबर पढ़ेंगे अभी। अत्रापि च संदृष्टि शुक्लादीनामियं तनुस्तन्तु नहि तन्तौ शुक्लाद्या किन्तु सितार्गैश्च तादृशः संतन्तु। गुण और गुणी में अभेद है। गुणी किसको कहना, द्रव्य। तो गुण और अभेद है ना, एक ही सत्ता है उनकी, तो गुण और गुणी में अभेद है। इसी विषय में तंतु का दृष्टांत है। तंतु यानी डोरा, धागा, गुजराती में क्या कहते हैं, गुण और, वो तो हिंदी की भाषा है, गुण गुणी में अभेद, यानी गुण और गुणी अभेद हमारी भाषा। शुक्ल गुण आदि का शरीर ही तंतु है, यानी शुक्ल आदि गुणों का ही तंतु बना हुआ है शरीर, यानी वो कुछ है या शरीर और आत्मा की बात वहां है ही नहीं, यानी शुक्लादि गुणों को छोड़कर और कोई वस्तु तंतु नहीं है। धागा है तो कैसा है, तो हम उसका वर्णन करेंगे, वो तो सफेद है, उसमें और क्या क्या है, वो उसके नरम है, सॉफ्ट है, जो कुछ है। और न ऐसा ही कहा जा सकता है कि तंतु में शुक्लादि गुण रहते हैं, किंतु शुक्लादि गुणों के एकत्रित होने से ही वह तंतु बना है। भावार्थ, शुक्लादि गुणों का समूह ही डोरा कहलाता है। जिस प्रकार डोरा और सफेदी अभिन्न है, उसी प्रकार द्रव्य और गुण भी अभिन्न है। जिस प्रकार डोरा सफेदी आदि से पृथक वस्तु नहीं है, उसी प्रकार द्रव्य भी गुणों से पृथक चीज नहीं है। यानी गुणों के समूह को ही हम द्रव्य कहते हैं, तो गुण कोई अलग चीज हो और द्रव्य कोई अलग चीज, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे मानने वाले हैं, इसलिए यहाँ इतना विस्तार से बताना पड़ा। अब इस पर फिर शंकाकार शंका उठाता है। 41 नंबर हम पढ़ेंगे वहां पर। अथ च भिन्नो देशो भिन्ना देशाश्रिता विशेषाश्च तेषामिह संयोगात् द्रव्यं दण्डीव दण्डयोगाद् वा। यदि देश को भिन्न समझा जाए, देश यानी वो जो फैलाव है ना द्रव्य का, उसको भिन्न समझा जाए और देश के आश्रित रहने वाले विशेषों को भिन्न समझा जाए, यानी दोनों की भिन्न भिन्न सत्ता है ऐसा मानेंगे, तथा उन सब के संयोग से द्रव्य कहलाने लगे। शंकाकार की ये शंका है कि जो प्रदेशों का विस्तार है, देश है वो अलग है और गुण है वो अलग है, और दोनों के संयोग से द्रव्य कहलाने लगा भी, इसके लिए वो शंकाकार ही स्वयं दृष्टांत दे रहा है। जिस प्रकार पुरुष भिन्न है, दंड ने डंडा भिन्न है, और दोनों के संयोग से दंडी कहलाने लगता है। दंडी ने लाठी वाला, लकड़ी वाला, जैसे हम कहेंगे
नहीं,
उसको हमने एक विशेषण बनाया ना उसका, जैसे मैंने दंडी, ये संस्कृत शब्द है ना, दंडी, दंड को धारण करने वाला वो दंडी, परंतु वो दंड वो अलग से रखता है ना, घर में आने के बाद उसने रख दिया कोने में उसका डंडा, हाँ, तो उसको डंडी नहीं कहेंगे। यानी दो भिन्न चीजें हैं और संयोग से उनको, जैसे हुई ना ये टोपी वाला है, ये चश्मे वाला, ये क्या हुआ, ये दो भिन्न चीजों है, उसके संयोग से हम उसका नाम लेते हैं। तो ये द्रव्य को ऐसा ही मानता है कि उसके देश भिन्न है और गुण भिन्न है और दोनों का संयोग हुआ वो द्रव्य हो गया। तो कहते तो क्या हानि है, ऐसा मानने में क्या हानि है, क्या आपत्ति है, इसके लिए समाधान करते हैं 42 से 45 तक। नैवं हि सर्वसंकर दोषाद्वा सुसिद्ध दृष्टांता तप्तिं चेतन योगात् अचेतनं चेतनं न स्यात् दोषत्वाद्वा। सर्वसंकर दोष, संकर समझते हैं, मिश्रण हो जाना, खिचड़ी खिचड़ी हमारी भाषा में, उपरयुक्त आशंका ठीक नहीं है, यानी ऊपर जो उठाई है, ऊपर बताई हुई आशंका यानी प्रश्न शंका ठीक नहीं है, यानी ऐसा मानना ठीक नहीं, गलत है। देश को भिन्न यानी द्रव्य के प्रदेश को भिन्न और गुणों को देशाश्रित भिन्न स्वीकार करने से सर्वसंकर दोष आवेगा, यह बात सुघटित दृष्टांत द्वारा प्रसिद्ध है। यानी गुणों को भिन्न मानने से क्या चेतना गुण के संबंध से अचेतन पदार्थ चेतन नहीं हो जाएगा, जैसे हमारा एक खंभा है, यह अचेतन है, तो ज्ञान वो किसी अन्य देश के साथ होकर उसको जीव कहा, तो ज्ञान गुण छुट्टा है ना, तो ये खंभे के साथ भी मिल जाएगा और वो खंभा भी जीव हो जाएगा, तो ये उसमें दोष आएगा। भावार्थ, जब गुणों को द्रव्य से पृथक स्वीकार किया जाएगा तो ऐसी अवस्था में गुण स्वतंत्र होकर कभी किसी से और कभी किसी से संबंधित हो सकते हैं। चेतना गुण को यदि जीव का गुण न मानकर एक स्वतंत्र पदार्थ माना जाए तो वह जिस प्रकार जीव में रहता है उसी प्रकार कभी अजीव पदार्थ में भी रह जाएगा, जैसे ज्ञान अजीव के साथ हो जाता है, जैसे स्पर्श रस भी जीव के साथ आकर जुड़ सकते ना, तो जीव भी गोरा गिरा हो जाएगा। उस अवस्था में अजीव भी जीव कहलाने लगेगा, फिर पदार्थों का नियम ही नहीं रह सकेगा, यानी कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा और कोई भी अन्य द्रव्य रूप हो जाएगा, कोई पदार्थ किसी रूप हो जाएगा। इसलिए द्रव्य से गुणों को भिन्न सत्ता वाला मानना सर्वथा मिथ्या है, थोड़ा सा गलत भी नहीं है, बिल्कुल मिथ्या। 43 नंबर पढ़ेंगे अभी। अथवा बिना विशेषे प्रदेश सत्वं कथं प्रमीयेत अपि चांतरेण देशे विशेष लक्ष्मावलक्षते च कथम। दूसरी बात यह भी है, के बिना गुणों के द्रव्य के प्रदेशों की सत्ता ही नहीं जानी जा सकती। यानी द्रव्य की चौड़ाई है तो कैसे जानेंगे, उसमें कुछ है ही नहीं ना गुण, उसको कैसे समझेंगे, कैसे जान सकेंगे। किसी चीज को हम जान सकते हैं तो उसके विशेषों द्वारा, उसकी कुछ विशेषताएं है तभी तो हम उसको जानते हैं। तो कहते कि बिना गुणों के द्रव्य के प्रदेशों की सत्ता ही नहीं जानी जा सकती, और बिना प्रदेशों के गुण भी नहीं जाने जा सकते, क्योंकि गुण रहेंगे कहां पर, उनको भी जाना नहीं जा सकता। भावार्थ, गुण समूह ही प्रदेश है, बिना समुदाय के समुदाय नहीं रह सकता। यानी समुदाय द्रव्य को कहा है, गुणों का समुदाय है ना, वो द्रव्य है, और जिनसे वो बना है उसको समुदाय, यानी गुणों को। हमें हमेशा गुण और गुणी कहते हैं, तो गुण और गुणी द्रव्य को गुणी कहते हैं। यहाँ समुदाय गुण को कहा और समुदाय द्रव्य को कहा, और बिना समुदाय के समुदाय नहीं रह सकता, दोनों के बिना एक भी नहीं रह सकता। एक दूसरे के बिना वो रह नहीं सकता। शब्दांतर में अथवा शब्दांतर में ऐसा कहना चाहिए कि दोनों एक ही बात है, गुणों का समूह कहो या द्रव्य कहो, एक ही बात है। 44 नंबर, अथ चैतयो पृथक्त्वे अठादहेतोश्च मन्यमानेपि कथमिव गुण गुणी भावः प्रमीयते सत्समानत्वा। यदि हठपूर्वक बिना किसी हेतु के गुण और गुणी भिन्न भिन्न सत्ता वाले ही माने जावे, और ऐसी अवस्था में दोनों की सत्ता समान होगी। क्या कहना चाहते हैं, एक बाजू हमने द्रव्य को रखा और एक बाजू गुणों के समूह को रखा, तो किसको गुण कहेंगे, किसको द्रव्य कहेंगे? द्रव्य क्या चीज है, गुणों के समूह को तो द्रव्य कहते हैं, और यहाँ द्रव्य गुणों का समूह कहा, तो उसको भी गुण कहेंगे, द्रव्य कहेंगे हम, तो दोनों समान चीजें हो गई ना, तो उसको भिन्न तो होते ही नहीं है, यही कहना चाहते हैं। दोनों की अगर भिन्न सत्ता मानेगी तो दोनों की सत्ता समान होगी, द्रव्य भी गुणों का समूह है और गुणों का समूह भी द्रव्य है, तो सत्ता की समानता में यह गुण है और यह गुणी है, ऐसा कैसे जाना सकता है, जा सकता है? यानी किसी एक को द्रव्य नाम देंगे और किसी एक को गुण नाम देंगे, ये कैसे बन सकता है? क्योंकि एक बाजू गुणों का पूरा समूह रखा है और एक बाजू द्रव्य रखा है, यानी वो द्रव्य में भी गुणों का समूह है। भावार्थ, जब गुण समुदाय को द्रव्य कहा जाता है, तब तो समुदाय को गुणी और समुदाय गुण को कहते हैं, परंतु गुण और गुणी को भिन्न मानने पर दोनों ही समान होंगे। उस समानता में किसको गुण कहा जाए और किसको गुणी कहा जाए, गुण गुणी का अंतर ही नहीं प्रतीत होगा। ये क्या मानने से क्या दोष होता है, ये बात चल रही है। इसीलिए 45 नंबर को भी पढ़ेंगे आगे। तस्मादिदमनवद्यम् देश विशेषास्तु निर्विशेषास्ते गुणसंज्ञका कथञ्चे परिणतिरूपा पुनः क्षणम् यावत्। इसलिए यह बात निर्दोष सिद्ध है, यानी उसमें कोई दोष नहीं है मानने में। क्या कि देश विशेष ही गुण कहलाते हैं। पहले हमने द्रव्य की चौड़ाई जो विस्तार है उसको देश कहा, और वो देश है वो विशेषों सहित कहा, तो विशेषों को यहाँ गुण कहते हैं, तो देश विशेष ही गुण कहलाते हैं। यानी देश विशेषों का नाम ही गुण है, गुणों में गुण नहीं रहते हैं, ये बात महत्व की है। देखो यहाँ द्रव्य में रहता ऐसा भी नहीं है, वो देश में रहता ऐसा, ये देश के विशेष है ऐसा कहते हैं। तो गुणों में गुण नहीं रहते, आपको कोई सूत्र मालूम है क्या? हाँ मिली भाई, गुणों में गुण नहीं रहते। हाँ बोलो ना, पूरा सूत्र बोलो ना, बोलो लक्ष्मी। हाँ द्रव्याश्रया निर्गुणा गुण, द्रव्य के आश्रय से परंतु गुण के आश्रय से गुण नहीं है। तो गुणों में गुण नहीं रहते, वे गुण प्रतिक्षण परिणमनशील है परंतु सर्वथा विनाशी नहीं है, क्योंकि गुण तो कायम रहते हैं, वो तो विशेष है और उनका परिणमन होता रहता है प्रत्येक गुण का। फिर शंकाकार की नई शंका है अभी 40 नंबर। एकत्वं गुणगुणिनो साध्यं हेतोस्तयोरनन्यत्वात् तदपि द्वैतमिव स्यात् किं तत्र निबन्धनम् इति चेत्। तु इति चेत्, उसका त्विति चेत हो। गुण गुणी दोनों ही एक है क्योंकि वे दोनों ही भिन्न सत्ता वाले नहीं है। यहाँ पर अभिन्न सत्ता रूप हेतु से गुण गुणी में एकपना सिद्ध किया जाता है। फिर भी क्या कारण है कि अखंड पिंड होने पर भी द्रव्य में द्वैत भाव सा प्रतीत होता है? तो गुण और गुणी एक ही है तो फिर उसमें ये भेद क्यों कर रहे हैं? ये कहना चाहते अखंड में फिर भेद क्यों, यानी बार बार वो भेद करने का निषेध करता है और भेद किया तो एक एक भेद को एक एक द्रव्य मानने की बात सोचते उसके। यानी वो सर्वथा एक भी नहीं, उसके जो लक्षण में कुछ भेद भी है ना, परंतु वस्तु रूप से वो अभिन्न है। समाधान ये 47 से शुरू होगा 63 तक। यत्किञ्चिदस्ति वस्तु स्वतः स्वभावे स्थितं स्वभावश्च अविनाभावे नियमात् विवक्षितो भेदकर्ता स्यात्। जो कोई भी वस्तु है वह अपने स्वभाव में स्थित है, यानी अपने गुण स्वरूप में स्थित है। कोई भी वस्तु, वह स्वभाव भी निश्चय से उस स्वभावी से, स्वभावी ने स्वभाववान यानी वस्तु से, उस वस्तु से अविनाभावी यानी अभिन्न, या अविनाभावी अभिन्न के अर्थ में ले लिया। हम अविनाभावी संबंध गुणों में लगाते, जहाँ एक गुण है द्रव्य का, किसी एक द्रव्य का जहाँ एक गुण है वहीं पर उसी द्रव्य के दूसरे अनंत गुण भी है ही है। जब हम कहेंगे ज्ञानमय जीव आत्मा, तो जहाँ ज्ञान गुण है वहीं पर जीव के अनंत गुण है ही है। किसी एक गुण के द्वारा हम वस्तु को सिद्ध करना है, हमको वस्तु को पहचानना है और ज्ञान एक प्रकट लक्षण है। तो जहाँ ज्ञान जानना 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 हो रहा है वही तो मैं स्वयं जीव आत्मा हूँ। एक प्रकट लक्षण के द्वारा हमने पूरे जीव को पकड़ा, मात्र ज्ञान को नहीं पकड़ना है हमको, पकड़ना पूरी वस्तु को, क्योंकि ज्ञान कहाँ है तो पूरी वस्तु में, और पूरी वस्तु में ज्ञान है तो जहाँ ज्ञान है वहाँ अन्य भी गुण है ही है। यानी जानने वाले एक पर्याय के द्वारा हम संपूर्ण वस्तु की भी सिद्धि कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहे यहाँ तो दूसरी बात हो रही है कि जहाँ गुण है स्थित है वह स्वभाव भी निश्चय से उस स्वभावी से अविनाभावी अभिन्न है, परंतु विवक्षावश भिन्न समझा जाता है। यानी गुण और गुणी अभिन्न है, अभिन्न यानी उसकी पृथक सत्ता नहीं है, फिर भी विवक्षावश प्रयोजनवश कथन के लिए समझने के लिए भिन्न समझा जाता है, भिन्न कथन भी किया जाता है। दोनों का नाम भिन्न है, नहीं ना, नाम है, नाम को ही संज्ञा कहेंगे, संख्या। द्रव्य एक है वहाँ गुण अनंत है, फिर उसका लक्षण भिन्न भिन्न है, गुणों के समूह को द्रव्य कहेंगे, और गुण किसको कहेंगे जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में रहता है, ये उसका लक्षण भिन्न भिन्न है। भाव यानी उसका जो प्रयोजन, उसका भाव यानी उसकी परिभाषा भिन्न भिन्न है। तो भिन्न समझा जाता है। भावार्थ, यद्यपि स्वभाव स्वभावी दोनों ही अभिन्न है। स्वभाव यानी गुण और स्वभाव यानी द्रव्य, गुण और द्रव्य, गुण और गुणी दोनों ही अभिन्न यानी सत्ता की अपेक्षा दोनों की एक ही सत्ता है। तथापि अपेक्षा कथन से स्वभाव और स्वभावी में भेद समझा जाता है, वास्तव में भेद नहीं। ये भेद क्योंकि वस्तु कैसी है समझने के लिए उसकी विशेषताएं क्या है, उसके विशेषताओं को हमने गुण नाम दे दिया, ये समझना आवश्यक है। उसको भिन्न भिन्न अलग अलग अलग, क्योंकि हमको वस्तु कैसी है वो समझना है। परंतु वास्तव में अभेद वस्तु को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि उसके भेदों 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 में हम उलझेंगे तो मूल अभेद रूप वो वस्तु ख्याल में रखकर फिर भेदों को समझना। इसे बारम्बार ये वास्तव में भेद नहीं ऐसा कह रहे। अब 48 नंबर, शक्तिर्लक्ष्म विशेषो धर्मो रूपं गुणस्वभावश्च प्रकृतिशीलं चाकृति एकार्थवाचका अमी शब्दाः। अमी यानी ये शब्द, कैसे एकार्थवाचका, एकार्थवाची है यानी समान अर्थ वाले, आपने अंग्रेजी में क्या सिनोनिमस। देखो अब ये गुण के लिए, यहाँ हमने पहले द्रव्य के लिए याद किए थे, अब ये गुण के लिए याद करना। शक्ति लक्ष्म विशेष, तीन तीन हम जोड़ी करेंगे फिर दो दो की करेंगे। शक्ति आप रिपीट करना, शक्ति लक्ष्म विशेष
धर्म रूप गुण
स्वभाव प्रकृति शील आकृति, ये सभी शब्द एक अर्थ के कहने वाले हैं, यानी सभी गुण के नाम हैं।
कौन सबको याद है इसलिए किसी ने बोला नहीं।
हाँ हम पूछेंगे ना। हाँ हाँ बोलो सुशीला जी बोलो। हाँ शक्ति लक्ष्मण विशेष धर्म रूप गुण स्वभाव प्रकृति शील आकृति, और कौन कहना चाहता है आप बताएंगे ना। बहुत अच्छा, नलिन भाई बताएंगे।
शक्ति लक्ष्मण विशेष
बहुत अच्छा,
ये बोलना चाहते
हैं आप। हाँ हाँ मिली भाई बोलिए, बोलो बोलो।
शक्ति लक्ष्मण विशेष धर्म रूप गुण स्वभाव प्रकृति शील आकृति,
बहुत अच्छा। और कोई वॉलंटियर है? हाँ अच्छा नितिन भाई बोलो बोलो। हाँ
शक्ति लक्ष्मण विशेष धर्म गुण रूप स्वभाव प्रकृति
शील आकृति, स्वभाव रूप और गुण कहना, गुण हम जो ऑर्डर है उसी में कहेंगे तो अच्छा है याद करने के लिए। बहुत अच्छा 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 अरविंद कल भी ऐसा ही मत कहना कल कल। तो ये गुण के अर्थ में ये सभी शब्द आ गए। अब 49 नंबर को पढ़ेंगे हम। देशस्य का शक्तिर्या काचिस्सान शक्तिरन्यास्या क्रमतो वितर्क्यमाणा भवन्त्यनन्ताश्च शक्तयो व्यक्ताः। देश की कोई भी एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं होती, यानी एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। देश के यानी द्रव्य की कोई भी एक शक्ति कहो या यहाँ एक गुण कहना है तो ज्ञान गुण श्रद्धा गुण में हो जावे, उद्गल का स्पर्श गुण वर्ण गुण में हो जावे, हो जाएगा कि नहीं? नहीं होता। तो कहते देश की कोई भी एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं होती,
तो ऐसा तो कहना है ज्ञान हुए बिना श्रद्धा कैसे होती है, यानी ज्ञान गुण के कारण श्रद्धा होती है।
ये जो कथन होता है ना उपचार से होता है, व्यवहार से होता है, निमित्त से होता है। वहाँ ज्ञान भी वो आगम ज्ञान बिना वो सच्ची सही श्रद्धा कैसे होगी, परंतु जहाँ सम्यक ज्ञान होता है उसी समय सम्यक दर्शन हुए होंगे, सम्यक चारित्र उसी समय हुआ है। परंतु पहले ज्ञान बिना श्रद्धा नहीं जो बताया था वो ज्ञान किस संबंधी वस्तु कैसी है, जैसे अभी हम द्रव्य का स्वरूप गुण का स्वरूप देख रहे हैं, इसको समझेंगे ही नहीं तो उसकी श्रद्धा उसकी प्रतीति कैसी है, इसलिए ज्ञान बिना श्रद्धा नहीं। परंतु प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक गुण में अपना अपना परिणाम स्वयं अपने कारण अपने में हो रहा है, ये तो भेद का कथन है। वस्तु तो पूरी वस्तु ही है ना, वस्तु ही ज्ञान रूप हो रही, वस्तु ही दर्शन रूप हो गई, वस्तु में ही सब कुछ हो रहा है। परंतु यहाँ समझने समझाने के लिए हम भेद कर करके समझ रहे। देखो देश की कोई भी एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप नहीं होती, इसी प्रकार क्रम से प्रत्येक शक्ति के विषय में विचार करने पर भिन्न भिन्न अनंत शक्तियां स्पष्ट प्रतीत होती है। अभी ज्ञान जैसी कितनी शक्तियां है जीव द्रव्य में तो अनंत है, तो ज्ञान अन्य अनंत रूप नहीं होता, दर्शन अन्य अनंत रूप नहीं होता, वो हर एक पर लगा लो गए, अनंत काल जाएगा तो भी शक्तियां फूटेगी नहीं। लेकिन तो प्रत्येक शक्ति के विषय में विचार नहीं करने पर भिन्न भिन्न अनंत शक्तियां स्पष्ट प्रतीत होती। भावार्थ 16 पृष्ठ पर आते हैं। द्रव्य में अनंत शक्तियां हैं, वे सभी एक दूसरे से भिन्न हैं। एक शक्ति दूसरी शक्ति रूप कभी नहीं होती, क्योंकि विशेषताओं को हम अन्य अन्य गिन रहे हैं, तो विशेषता अन्य है तभी तो उसको अन्य अन्य नाम देकर समझा रहे हैं। अब 50 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे हम। स्पर्शो रसश्च नंदो वर्णो युगपद यथा रसाल फले प्रतिनियतेन्द्रिय गोचर चारित्वात्ते भवन्त्यनेकेपि। जिस प्रकार आम के फल में रसाल फल होता है, ऊपर उसका नाम श्लोक में, अभी सीजन है ना कि आम के फल में स्पर्श रस गंध वर्ण चारों ही एक साथ पाए जाते हैं, वे चारों ही गुण भिन्न भिन्न नियत इंद्रियों द्वारा जाने जाते हैं, इसलिए वे अनेक हैं। क्या कहना चाहते हैं? नियत यानी निश्चित। ये स्पर्श गुण जो आम में है, ये सॉफ्ट है, नरम है, जो कुछ है, कौन से इंद्रिय के द्वारा जानते हैं? स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा। तो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा वो पीला हुआ है कि हरा हुआ है समझ में आता है कि नहीं आता, ऐसा पकड़ के तो कहते हैं कि जो फल है आम का फल, उसका जो रस है वो हमें रसने इंद्रिय के द्वारा ही ख्याल में आएगा, उसका जो वर्ण है चक्षु इंद्रिय के द्वारा ख्याल में आएगा, उसका जो गंध है गंध से पहचानते हैं हापुस है कि पायरिया, तो वो तो घ्राण इंद्रिय के द्वारा हमें ख्याल में आ जाएगा। तो ये अलग अलग है, अलग अलग इंद्रियों के द्वारा जानते हैं, नियत यानी निश्चित। क्या कहते हैं कि आम के फल में स्पर्श रस गंध वर्ण चारों ही एक साथ पाए जाते हैं, क्योंकि गुणों के समूह को तो हम द्रव्य कहेंगे और वो पुद्गल है, स्कंद है, तो उसमें चारों ही गुण उसके जो कोई पर्याय वो पाए जाएंगे। वे चारों ही गुण भिन्न भिन्न नियत इंद्रियों द्वारा जाने जाते हैं, वो अन्य अन्य इंद्रियों का विषय है, इसलिए वो अन्य अन्य है, ये बात सिद्ध हो जाती है। स्पर्श भिन्न है, रस भिन्न है, गंध भिन्न है और वर्ण भिन्न है, इसलिए वे अनेक है। भावार्थ आम के फल में जो स्पर्श है उसका ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय से होता है, रस का ज्ञान रसना इंद्रिय से होता है, गंध का ज्ञान नासिका से होता है और रूप का ज्ञान चक्षु से होता है। भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय होने से वे चारों ही गुण भिन्न है, यानी भिन्न इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं, इसलिए उसके गुणों को भिन्न यहाँ सिद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी गुणों के कार्य भी भिन्न भिन्न है। एक क्या दलील की है तो क्या बताया, वो भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय है, और दूसरा क्या, हर एक गुण का कार्य भिन्न भिन्न होता है, इसलिए सभी गुण भिन्न भिन्न है। ये प्रत्येक का कार्य भिन्न भिन्न होता है, इसलिए सिद्धांत प्रवेशिका में क्या सीखे हम, कौन सा गुण सीखे, यहाँ क्या लिखा, सभी गुणों के कार्य भी भिन्न भिन्न होते हैं। वस्तुत्व गुण क्या बताता है? अपना अपना प्रयोजन वहाँ द्रव्य के ऊपर घटाया, परंतु द्रव्य का प्रत्येक गुण भी अपना अपना परिणाम अपना अपना कार्य करेगा, इसलिए सभी गुण भिन्न भिन्न है। 51 नंबर देखो, यहाँ पहली लाइन में यद दर्शनम हुआ है, यद दर्शनम चाहिए, यानी यद हुए ना, यद दर्शनम, ऐसा यद दर्शनम, फिर दोबारा द लिखा है वो नहीं चाहिए। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? दर्शन लिखा है ना, यद दर्शन लिखा है, वो यद दर्शन चाहिए, यद और दर्शन से यद दर्शन हुआ, फिर दोबारा द नहीं चाहिए वहां पर। हाँ, डबल द ऑलरेडी है, शायद आपकी पुरानी पुस्तक होगी तो उसमें से निकाला होगा किसी द के ऊपर, खाली एक लाइन मार दो। 51 नंबर में पढ़ेंगे हम, यदुदाहरणम चैतन्ये यद्दर्शनम गुणश्चैक तन्न ज्ञानम न सुखम चारित्रम वा न कश्चिदितरश्च। सभी गुण पृथक पृथक है, इस विषय में यह उदाहरण। जब पृथक कहते हैं वो सत्ता पृथक नहीं है, उसके ने उसका जो प्रदेश भिन्न नहीं है, गुण भिन्न भिन्न है। पृथक कहने से वो जैसे द्रव्य जुदा है और गुण जुदा, ऐसा नहीं है, और एक गुण इधर रहता है दूसरे गुण दूसरे प्रदेश, ऐसा भी नहीं है। तो इस विषय में यहाँ उदाहरण देते हैं, जैसे जीव द्रव्य में जो एक दर्शन नामा गुण है वह ज्ञान नहीं हो सकता, न सुख हो सकता है, न चारित्र हो सकता है, अथवा और भी किसी गुण रूप नहीं हो सकता, दर्शन गुण सदा दर्शन रूप ही रहेगा। दर्शन गुण में हमें ज्ञान दर्शन वाला दर्शन ले लो या वो श्रद्धा वाला दर्शन ले लो, कोई बात नहीं, कोई भी एक गुण दूसरे गुण रूप हो ही नहीं सकता। 52 नंबर, एवं यह कोऽपि गुणः सोऽपि च न स्यात् तदन्य रूपो वा स्वयमुच्छलन्ति तदिमा मिथो विभन्नाश्च शब्दयोनन्ताः। यानी पहले ऊपर क्या बताया, एक दर्शन नाम का गुण न ज्ञान रूप हो सकता है, न अन्य सुख रूप, न चारित्र रूप, अन्य किसी रूप नहीं हो सकता। अब यहाँ कह रहे हैं इसी प्रकार जो कोई भी गुण है वह दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता। वहां तो एक दर्शन नाम के गुण पर उदाहरण दिया था, इतने जो उदाहरण में हमने दर्शन पर घटित किया, इसी प्रकार यानी सिमिलरली कोई भी एक गुण अन्य गुण रूप नहीं हो सकता। दर्शन पर लगाए, ज्ञान पर लगाओ, सुख पर लगाओ, चारित्र पर, सब एक एक को लगाओ, वो अन्य गुण रूप नहीं हो सकता। तो कहते इसी प्रकार जो कोई भी गुण है वह दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता, इसलिए द्रव्य की अनंत शक्तियां परस्पर भिन्नता को लिए हुए हैं, भिन्न भिन्न कार्यों द्वारा स्वयं उदित हो रही है। क्या कहना चाहते हैं? प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, अनंत शक्तियां यहाँ कहा हो सकती है, कोई एक शक्ति या गुण दूसरे रूप नहीं हो सकती, और वो परस्पर में भिन्नता लिए हुए एक ही द्रव्य में विद्यमान है, और हर एक जो गुण है वो अपना अपना भिन्न भिन्न कार्य कर रही है। तो उसको कहा भिन्न भिन्न कार्यों द्वारा स्वयं उदित हो रही है, उदित हो रही है, प्रकट हो रही है, क्योंकि गुण अपने पर्याय रूप से प्रकट हो रहे हैं। ख्याल में ना, शक्ति उदित हो रही है यानी क्या है, प्रकट हो रही है, किस द्वारा, अपने अपने कार्यों द्वारा, यानी अपने अपने पर्याय द्वारा, क्योंकि द्रव्य में अनंत शक्तियां यानी अनंत गुण है, और प्रत्येक गुण का अपना अपना कार्य भिन्न भिन्न चल रहा है, यानी अपना अपना परिणमन चल रहा है, अपने परिणमन द्वारा ही वो स्वयं उदित हो रही है शक्तियां, इस तरह से कहा यहां पर। अब 53 नंबर पढ़ेंगे, तासाम अन्यतरस्या भवन्त्यनन्ता निरंशकांशा तरतम भाग विशेषैर अंशेद प्रतीयमानत्वात्। उक्त शक्तियों में से प्रत्येक शक्ति के अनंत निरंश अंश होते हैं। अब यहाँ निरंश अंश है, पहले द्रव्य के निरंश अंश कहकर उसको प्रदेश कहा, अब यहाँ शक्ति के निरंश अंश क्या क्या कहेंगे? लिखा है अपने, अच्छा अविभाग कर दीजिए, क्योंकि उसकी शक्ति है ना, भाव भाव नापने का उसका यूनिट बनाएंगे, वो भी निरंश है जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता, जिसको अविभाग कहो या निरंश कहो एक ही बात है। तो कहते उस शक्तियों में से प्रत्येक शक्ति के अनंत निरंश अंश होते, प्रत्येक के अनंत होते। गुण की बात चल रही है यहाँ पे, पर्याय में कितने व्यक्त है उसकी बात नहीं है, यहाँ पर प्रत्येक गुण जो है उसकी अपनी अपनी शक्ति के अंश कितने हैं, तो कहते अनंत है। गुण में निरंश अंश, गुण में नहीं, द्रव्य में निरंश अंश चौड़ाई की अपेक्षा, वो तो अलग अलग द्रव्य में अलग अलग थे, कहीं असंख्यात कहीं अनंत कहीं एक प्रदेशी, यहाँ गुणों की बात चल रही है। गुणों के भी अपने अपने निरंश अंश होते हैं, शक्ति के अंश है, इसको हम अविभाग प्रतिच्छेदों में नापेंगे। तो हरेक के अपने भिन्न भिन्न जो है अनंतों में ही है सब। हीनाधिक विशेष भेद से उन अंशों का परिज्ञान होता है। हीनाधिक विशेष भेद से यानी किसी गुण में कितने अंश है, कितनी किसी में कितने हैं, तो उससे उसका परिज्ञान होता है, उसका हमें ज्ञान हो जाता है। अब इसके लिए फिर दृष्टांत दे रहे हैं, 54 नंबर को पढ़े। दृष्टांतः सुगमोयम् शुक्लं वासस्ततोऽपि शुक्लतरम् शुक्लतमं च ततः स्यात् अंशाश्चैते गुणस्य शुक्लस्य। देखो यहाँ शुक्ल का उदाहरण दिया है, ऊपर लिखा ना शुक्ल है, शुक्लतर है, शुक्लतम है, तरतम समझते हैं, गुड बेटर बेस्ट ऐसे है। तो शुक्ल शुक्लतर यानी अधिक शुक्ल, शुक्लतम यानी सबसे सर्वोत्कृष्ट शुक्ल। देखो हम इसका अर्थ पढ़ेंगे। एक सफेद कपड़े का सुगम दृष्टांत है, सुगम यानी समझने में आसान। कोई कपड़ा कम सफेद होता है, कोई उससे अधिक सफेद होता है, तो रोज टीवी पर देखते हैं ना जाहिरात। अच्छा आपने टाइट को पढ़ा, किसी को और दूसरा सा आपको याद आएगा। तो कोई कपड़ा कम सफेद होता है, कोई उससे अधिक सफेद होता है, और कोई उससे भी अधिक सफेद होता है, ये सब सफेदी के ही भेद है, यानी वो तो शुक्ल वर्ण जो है सफेद कलर, उसी के ये अलग अलग भेद है। इस प्रकार की तरतमता, तरतमता यानी हीनाधिकता, अनेक प्रकार हो सकती है। यहाँ तो केवल तर और तम दो भेद बताए, तो उसमें कितनी डिग्री लगा लो आप, कोई लाल कलर है अब बहुत फीका है, फिर उसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, हाँ उसके कितने है? ये तो हमें दृष्टिगोचर भेद, ऐसे उसमें कितने भेद हो। इसलिए शुक्ल गुण के अनेक अंश कल्पित किए जाते हैं। यहाँ तो अनंत लिखा है ना, वास्तव में सफेदी पर्याय है, यहाँ दृष्टांत में गुण रूप से स्वीकार की। 55 नंबर पढ़ेंगे, ये ख्याल में है ना बात, जैसे सफेदी है तो पर्याय होने पर यहाँ समझाने के लिए उसको गुण कहकर समझा रहे, उसके जैसे अलग अलग डिग्रीज हो गया, अंश हो गए, वैसे प्रत्येक गुण में, अभी गुणों में लगाना, यहाँ पर्याय की बात उठाई नहीं, अभी पर्याय की बात ये भी नहीं, उन्होंने जो पढ़ाया है वहीं तक हमको लिमिट रखना है, जब पर्याय की बात आएगी तब उसकी करेंगे। यहाँ गुणों के अपने अपने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, कितने होते हैं तो अनंत होंगे। 55 नंबर, अथवा ध्यानम यावत् जीवस्यैको गुणोऽप्यखण्डोऽपि सर्वजगन्य निरंश छेदैरिव खंडितोऽप्यनेक स्यात्। दूसरा दृष्टांत जीव के ज्ञान गुण का स्पष्ट है। जीव का ज्ञान गुण यद्यपि एक है, क्योंकि जीव में ज्ञान नाम का एक गुण है, यद्यपि एक है और वह अखंड भी है, कितना बड़ा है, तो जितना बड़ा जीव है असंख्यात प्रदेशी उतना एक अखंड ज्ञान गुण है। तथापि सबसे जघन्य अंशों के भेद से खंडित सरिखा अनेक रूप प्रतीत होता है। क्या कहना चाहते हैं? सबसे जघन्य अंशों के भेद से खंडित सरिखा अनेक रूप प्रतीत होता है, यानी जो सबसे जघन्य ज्ञान किसके होता है, तो सूक्ष्म निगोद लब्ध पर उसमें भी अनंत अविभाग प्रतीक्ष है। हमारे आपके ज्ञान में उससे भी कितने अनंत गुना है, और केवल ज्ञानी में उससे भी अनंत। देखो यहाँ भावार्थ में लिखा है, सूक्ष्म निगोदिया लब्धि पर्याप्त जीव का, ये निगोदिया समझते हैं ना, साधारण वनस्पति का एक शरीर में अनंत जीव रहते हैं उसको निगोद कहेंगे। उसमें भी कोई बादर होते कोई सूक्ष्म होते, उसमें ये सूक्ष्म वाला दिया पर्याप्त भी होता है अपर्याप्त भी होते हैं। अपर्याप्त यानी वो श्वास के 18 विभाग में मर जाते हैं, उसको ये लब्धि अपर्याप्त। तो सूक्ष्म निगोद लब्धि अपर्याप्त ये विशिष्ट पर्याय है जीव की। उस जीव का अभी वहां ज्ञान कितना प्रकट है, तो बहुत अल्प है। जिसको हम पर्याय या पर्याय समास ज्ञान कहेंगे वो कितना है, तो अक्षर नाम का जो ज्ञान है उसका अनंत अभाव है। तो कहते सूक्ष्म निगोदिया लब्धि अपर्याप्त जीव का अक्षर के अनंत विभाग जघन्य ज्ञान है। ये मिनिमम पॉसिबल, इतना तो ज्ञान का उभार रहेगा ही रहेगा, इतना भी नहीं रहेगा तो जड़ होने का प्रसंग आ जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं, कोई ऐसी पर्याय नहीं है जीव की कि जहां वो ज्ञान से रहित हो जाए। तो कहते उस जघन्य ज्ञान में भी अनंत अंश है, यानी अनंत विभाग प्रतिच्छेद है, वो मिनिमम पॉसिबल है। जो प्रकट ज्ञान ज्ञान गुण में तो है अनंत, परंतु उस जघन्य ज्ञान में भी अनंत विभाग प्रतिच्छेद होते। उसी निगोदिया की ऊपर की उत्तरोत्तर अवस्थाओं में थोड़ी थोड़ी ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, यानी वो जो एकेंद्रीय जीव कहो या अन्य निगोद जीव कहो, ये ज्ञानों की विषय अलग अलग स्थान जिसको भेद होगी ना, वेरिएशंस, ये सबसे मिनिमम ज्ञान है। थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है, उसमें भी बहुत सारे भेद है, असंख्यात भेद होंगे। तो थोड़ी थोड़ी ज्ञान की वृद्धि हो जाती है। द्विन्द्रिय आदि त्रस पर्याय में और भी वृद्धि होती है, क्योंकि एकेंद्रियों की अपेक्षा त्रस जीवों को यानी द्विन्द्रियों को ज्ञान का उघाड़ ज्यादा है, तो उनके अविभाग प्रतिच्छेद भी ज्यादा हो गए। बढ़ते बढ़ते उस जीव का ज्ञान गुण इतना विशाल हो जाता है। गुण कहाँ है, परंतु यहाँ पर्याय की बात चल रही है, प्रकट अवस्था की बात है, कि चराचर जगत की प्रतिक्षण में होने वाली सभी पर्यायों को एक साथ ही स्पष्टता से जानने लगता है। आपको अमूल बताना ये कौन सी ज्ञान की बात चल रही है, फिर से पढ़ना। उस ज्ञान जीव का ज्ञान गुण इतना विशाल हो जाता है चराचर जगत की, चराचर को जड़ चेतन सब
केवल ज्ञान,
बहुत अच्छा केवल ज्ञान, प्रतिक्षण में होने वाली सभी पर्यायों को। हाँ ये अच्छा क्या नहीं बताया, नहीं बसाया इसलिए आपको शाबाश की। तो जगत के प्रतिक्षण में होने वाली यानी अनादि अनंत सभी पर्यायों को एक साथ ही स्पष्टता से जानने लगता है, ये ज्ञान का इतना ही विकास हो जाता है। विचारशील अनुभव कर सकते हैं एक ही ज्ञान गुण में जघन्य अवस्था से लेकर कहां तक वृद्धि होती है। वो कहीं बाहर से तो नहीं आई है, बस यही क्रम से होने वाला वृद्धि भेद सिद्ध करता है कि ज्ञान गुण के बहुत से अंश है जो कि हीनादिक रूप से प्रतीत होते हैं, प्रकट होते हैं, हम कहेंगे पर्याय में प्रकट होते हैं। ज्ञान गुण में तो कितने हैं, इसी प्रकार प्रत्येक गुण के अंश अनंत है, यानी प्रत्येक गुण में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, उसको यूनिट बनाया हमने, शक्ति का अंश, शक्ति नापने का स्मॉलेस्ट यूनिट, उसको हम क्या कहेंगे, अविभाग प्रतिच्छेद। जैसे क्षेत्र नापने का छोटा यूनिट उसको हम प्रदेश कहेंगे, काल नापने का छोटा यूनिट उसको हम समय कहेंगे, और यहाँ हम अविभाग प्रतिच्छेद कहेंगे, इन्हीं का नाम अविभाग प्रतिच्छेद है। अब यही रुकेंगे।
जामानी के ज्ञान ते सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।